نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے آج کا ہمارا سیشن باب نمبر 29 کتابت العلم علم کی باتوں کو لکھنا حدیث نمبر ہے 93 اور گرین بکس میں سے پیج نمبر 134 کے بالکل نیچے سے شروع کریں گے آج کے اس پہلے باب میں ہمارے لیے کیا ہے وہ انہو سے مراد اوپر والے راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ وعنہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حبس مکہ القتل اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل اول فیلا یا ہاتھی کو روک لیا حبس کا لفظ اردو میں پڑھتے ہیں آج بڑی حبس ہے حبس ہے دوام میں رکھنا کسی کو ٹھیک ہے وہی لفظ ہے ادھر روک لینے کے معنوں میں اور قتل سے روکا یا فیل سے روکا دونوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ حدیث میں تھا دونوں انہوں نے بیان کر دیے اشارہ ہے اصحاب الفیل کی طرف علم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفیل کی طرف وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلط کر دیا ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والمومنین اور مومنوں کو مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی کہ جب ہاتھی والوں نے آنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو تو روک دیا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر 8 ہجری میں مدینہ سے مکہ آئے تو آپ نے ان کو اجازت دی آپ اندر آئے اور بالآخر کافروں پر آپ کو غالب کر دیا گیا اللہ خبردار رہو وَإِنَّا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ آپ نے فرمایا خبردار رہو کہ مجھ سے پہلے مکہ حلال نہیں ہوا کسی کے لیے اور وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِ اور نہ وہ حلال ہوگا میرے بعد کبھی بھی الا خبردار ہو جاؤ وَإِنَّهَا اور بے شک وہ حلت لی سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ حلال ہوا تھا میرے لیے دن کی ایک گھڑی میں الا خبردار ہو جاؤ وَإِنَّهَا اور بے شک وہ سَاعَةِ هَٰذِهِ حَرَامٌ وہ اس وقت بھی حرام ہے یعنی وہی بات جو پچھلے سیشن میں بھی ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ حلال تھا اور کسی کے لیے نہیں لہذا لا یختلا شوقہا نہ کاٹا جائے اس کے کانٹے کو شوق کہتے ہیں کانٹے کو شوقہ کانٹے ہتھیار ٹھیک ہے یختلا کا معنی کاٹنا ولا اور نہ یعدد شجروہا کاٹا جائے اس کے درختوں کو یعنی نہ تو وہاں کے کانٹے کاٹے جائیں اور نہ درخت کاٹے جائیں ولا تلقتو ساقکتہا الا لمنشد اور نہ وہاں کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے الا یہ کہ اس کا اعلان کروایا جائے یعنی کسی کو اعلان کروایا جانا کسی چیز کا کہ یہ چیز گری ہوئی ہے وہ اٹھا سکتا ہے یا پھر کوئی اس کو جاننے والا فَهُوَ بِخَيْرٍ نَظَرَيْنِ تو اس کے پاس دو باتوں کا اختیار ہے اِمَّا اَنْ يُوْقَلَ یا تو یہ ہے کہ ودیت قبول کر لے وَإِمَّا اور یا یہ کہ اَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ یہ کہ وہ قصاص لے لے یعنی اشارہ یہ کہ اگر بالفرض وہاں کوئی کسی کو مار ہی لیتا ہے ان حرمتوں کو پامال کر دیتا ہے تو پھر جو شخص مارا جا رہا ہے اس کے پاس دو اختیار ہیں جس کا عزیز مارا جائے اس کو دو میں سے ایک کا اختیار ہے دیت قبول کرے دیت کہتے ہیں بلڈ منی کو یعنی رینسم ہوتا ہے ایک اور یا قصاص لے کر یہ کام کر دے خیر یہ بات ابھی آپ کر رہے تھے فجا رجل من اہل یمنی ایک یمنی شخص آیا فقالا تو اس نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجئے میرے لیے یہ مسائل اے اللہ کے رسول یعنی اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ مجھے یہ باتیں لکھ دیجئے فقالا تو آپ نے فرمایا اکتبو لی ابی فلان آپ نے عرض کیا کہ ابو فلان کو کہا کہ اچھا اس کو لکھ دو فقال رجل من قریش تو قریش کے ایک شخص نے عرض کیا الا مگر الازخرا ازخر گھاس اے اللہ کے رسول इस हर हाल से ऐसे ही है कि जैसे आज हमारे लिए कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि जिसके बगैर हम गुजारा ना करें। इसको जलाते भी थे, इनके जानवर भी खाते थे, बाज़ दफ़ा मर्दों के ऊपर जब कफन नहीं होता तो इस हर घास में उसको दफन करते थे, यानी बहुत कॉमनली यूज चीज़ थी। तो कहा अल्लाह के नबी, क्या हम इस हर घास भी ना काटें? और इसके अंदर खुशबू होती थी एक इस घास के अंदर, इन्ना लनज अलहू फी बुयूतिना व कुबूरिना, क्योंकि हम इसको अपने घरों और अपनी कब्रों में इस्तेमाल करते हैं। आपने फरमाया हाँ, इल्ला इसखिरा, हाँ मगर इसखर यानी वो काट सकते हो। अब इस हदीस में, हदीस तो पीछे गुजर चुकी है जो मक्का से मुतल्लिक थी, लेकिन यहाँ जो बात लफ्ज़ है वो है उक्तुबू, लिखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि इसको लिखो, तो इससे इमाम बुखारी ने इस बात को लिया कि इल्म की बात को लिखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही ये चीज़ मिल जाती है। तो जो लोग सिर्फ सुनते हैं उनसे ज़्यादा वो लोग जो लिखते भी हैं वो फ़ायदा भी ज़्यादा उठाते हैं, और इंशाल्लाह उनका अजर भी दुगना होता है। अगली रिवायत अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा काला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, लम्मा इश्तद्दा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजहुहु काला, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए तो आपने फरमाया, ये कब की बीमारी है? मौत की बीमारी, यानी आप जिस बीमारी से फिर आप ठीक ना हो सके। तो आपने बुलाया, काला ओ थू निबी किताबिन, मेरे पास लिखने का सामान लाओ, फिर उक्तुब लकुम किताबन, फिर मैं तुम्हारे लिए कैसी तहरीर लिख दूँ, ला तदिल्लु वादहू, कि उसके बाद तुम गुमराह नहीं होंगे, कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें लिख दूं, कुछ अहम हिदायत इंस्ट्रक्शंस, कि उसको अमल करोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। काला उमरु, हज़रत उमर ने कहा, इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबहुल वजाऊ, कि आप पर बीमारी का गलबा हो चुका है, व इंदना किताबुल्ला ही हसबुना, और हम पर अल्लाह की किताब है यानी कुरान पाक हमारे पास है जो हमको काफ़ी है। बात समझ रहे? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं लिख दूँ कुछ, लेकिन हज़रत उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी बीमारी में शायद कोई ऐसी बात लिख दें जो कहना नहीं चाह रहे। समझ आती है ना, बीमारी में लफ्ज़ नहीं सही बोलने चाहते, मुंह से बात कुछ और निकलती है। तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी आप फिक्र नहीं करें, हमारे पास एनफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। यहाँ याद रखिए, हज़रत उमर हदीस का इनकार नहीं कर रहे। बाज़ ज़ालिम लोग हज़रत उमर की ये बातें पेश करके कहते, देखो ये तो अल्लाह के नबी के सामने भी हदीस नहीं मानते थे, तो अगर हम उमर को गाली दे देते हैं तो क्या बड़ी बात है। तो ये मतलब नहीं था, ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रही हूँ कि आप में से कोई कहे कि आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ना पढ़ाएं, कोई बात नहीं हम कुछ और कर लेते हैं, चले आप ना पढ़ाएं हम रिकॉर्डिंग से तफसीर सुन लेते हैं, यही बात होगी ना। तो यही वहाँ स्तैरियो दिख रहा है कि अल्लाह के नबी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी रहने दीजिए, लिहाजा फख्तलफू, बस इसमें इख्तलाफ शुरू हो गया, वकसुरल लगातू, और बहुत शोरगुल मच गया, यानी जो लोग थे अब दो राय हो गई, कुछ कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी को दे दो वो लिख दें वो बात कर दें, कुछ कह रहे हैं नहीं, इख्तलाफ शुरू हो गया, शोर हो गया। काला, तो अब आपने फरमाया, खूम अन्नी, मेरे पास से हट जाओ, वला यम बगीन दिन तनाजू, और मेरे लड़ाई झगड़े का क्या काम है, मैं नहीं चाहता कि लड़ो, यानी लड़ना है तो कहीं और जाके लड़ो, मेरे पास ना लड़ो। यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह के नबी को झगड़े और तनाज़े कितने नापसंदीदा थे। आज उसी नबी की उम्मत उसी नबी का नाम ले लेके झगड़ती है, इख्तलाफात, फिरकावाजी, मसलक, आपकी जमात, आपका गिरोह, मेरा, उसका, दिस दैट, ये कुछ बातें चल रही होती हैं। लिहाजा ऐसे वक्तों में अल्लाह ताला अपने नबी की ज़ुबान से ये बात कहते हैं, कूम अन्नी। आज सोचिए अल्लाह के नबी का चैन पड़ता होगा जब लोग झगड़ते, और आज मस्जिद नबी में रोजे के पास जाकर लोग जो झगड़े कर रहे होते हैं, औरतों के दुपट्टे गलों में घूम रहे होते हैं, चीख रही होती हैं, पाँव पे पाँव रखती हैं, यहाँ बैठ के मक्का मदीना की बातें करना बिल्कुल और बात है। जब वहाँ जाते हैं वही बंदा बचता है जो पूरा जहनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी तौर पर तैयार हो, इतना फर्क पड़ता है जाने से। लेकिन यह है कि आपने झगड़े को पसंद ना किया, फिर उसके बाद आप देखिए कि यहाँ इस हदीस में एक दो बातें, वही बात है कि हज़रत उमर का मसला ये नहीं था कि आपकी बात नहीं मानना चाहते, मोहब्बत में कह रहे थे कि आपको तकलीफ़ ना हो, आप हमारी इस वक्त फिक्र ना करें, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि इस बात के बाद तकरीबन 4 दिन तक नबी सल्लम जिंदा रहते, आखिरी वक्त तक आपको तड़प थी लोगों को पढ़ाने की। हम कितनी जल्दी सिक लीव लेके बैठ जाते हैं, छुट्टी तो हमें ऐसे लगता है कि दुनिया का सबसे आसान काम है, आम हालात में बंदा छुट्टी ले ले, लेकिन जब उजर हो तो जरूर आए, अल्लाह को दिखाए कि अल्लाह मैं आ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, जैसा भी करूँ। तू कौन सा मुझसे बेहतरीन का सवाल करता है? तू तो खुद कहता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो अल्लाह के नबी रहे, फिर आप लोगों के अहकामात लिखाते रहे, यानी आप लोगों को बताते रहे ये करना वो करना मेरे बाद ये करना। और ये सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि जो भी मसाइल बाद में पेश आए, जिस किस्म के, अल्लाह के नबी ने लोगों को उसके बारे में खातिर ख्वाह इल्म दे दिया था। और एक अच्छे लीडर की ये पहचान है, आप अपने ऊपर लें, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, अगर आपको पता चल जाए कि मेरे पास बस एक हफ्ता है, कोई ऐसी बीमारी है, कुछ भी है, आप क्या करेंगी? अमूमन मैंने देखा है हमारे घरों में इर्द गिर्द जब किसी का पता चल जाता है ना, इसने अब नहीं बचना, वैसे तो किसी को भी नहीं पता, लोग कहते हैं डॉक्टरों ने कह दिया 3 महीने है इसके पास, मैं कहती हूँ मुबारक हो आपको, इनको तो डॉक्टर ने 3 माह बता दिए, हमें तो वो भी नहीं पता, हमें तो ये पता है कि मौत किसी वक्त भी आ सकती है। लेकिन चलिए अगर मिसाल है कि असबाब दिख रहे हैं इस किस्म के, रिश्ते कर दो, बेटी का उधर कर दो, बेटे का उधर कर दो, दौलत का क्या करना है, अपने हाथ से दौलत बांट जाओ, उसका बता जाओ, ये कर, आखिरी वक्त तक दुनिया दुनिया, किसका क्या लेना है, कर्जे के हैं, देने के, लेने के। लेकिन अल्लाह के नबी का एक मिशन था, मुझे तो अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी में कहीं सिर्फ इबादतें नहीं दिखी, सिर्फ बैठ के वजीफे पढ़ना नहीं दिखा, नाते नहीं पढ़ते थे, कुरान भी नहीं खाली पढ़ते थे, वो रातों को पढ़ते थे, दूसरों के बीच में क्यों आप अल्लाह से बातें करें, आप प्यारों से तो अकेले में ही बातें करते हैं ना। अल्लाह के नबी का जो मिशन था वो लोगों को इल्म देना था, जहालत दूर करनी थी। और आज उम्मत मुस्लिमा इससे कितना दूर है, तकलीफ होती है मुसलमानों के हाल को देखकर। अल्लाह ताला हमें आपके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अगला बाब है बाब अल इल्म वल इज्जतु बिल लैल, रात को इल्म और नसीहत की बातें करना, यानी क्या रात को इल्म सीखा जा सकता है। अन उम्मे सलमत रज़ी अल्लाह अन्हा कालत, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, इस तई क़ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़क़ाल, एक रात आप बेदार हुए। ये जो लफ्ज़ है ना इस कईजात, ये जागने को कहते हैं, बेदार होना, उठना, यानी आप नींद छोड़ के उठे एक रात को। फ़काला, फिर आपने कहा, सुबहान अल्लाही, पाक है अल्लाह, माज़ा उन्ज़िलल लैलत मिनल फितन, आज रात कितने फितने नाजिल किए गए, व माज़ा फुतिहा मिनल ख़ज़ाइनी, और कितने ही खजाने खोले गए। फिर आपने फरमाया, ऐक़िज़ू, जगाओ, उठाओ, वेकअप कॉल दो, किनको, सवाहिबल हुजर, इन हुजरों में सोने वालों को, हुजरों में जो सो रही हैं, अपनी बीवियों की तरफ इशारा था कि मेरी बीवियों को उठाओ, क्योंकि फरुब बकासियत इन फिर दुनिया, पस कई दफा ऐसा होगा, जैसे लफ्ज है ना रुब्बा, इंग्लिश में हम कहते हैं ना कि एक तो होता है ना वंस अपॉन ए टाइम, और एक होता है अक्सर होगा, यानी फरुब्बा अक्सर ऐसा होगा, क्या, कासियतन, कपड़े पहनने वालियां, फिर दुनिया दुनिया में, आरियतुन, बगैर कपड़ों के होंगी, औरत लफ्ज भी इसी से है, यानी बरहना होंगी, नेकिड होंगी, अलाखिरती, आखरत में। अल्लाह अकबर, ये आपकी एक जुमले की हदीस है, लेकिन इसमें इतने मानी मुफस्सरीन ने इस पर इतनी लंबी लंबी बातें की हैं। पहली बात देखिए कि नबी सल्लम नींद छोड़ के उठे, और आपको अंदाजा हुआ कि फितने नाजिल हो रहे हैं, क्यामत के, शैतान के, दुनिया में जो कुछ होगा। फिर कितने खजाने खोले गए, मतलब क्या है कि इस वक्त सोने वाले उन खजानों से महरूम है, जो उठेंगे इन खजानों को लेंगे। फिर अगली बात पता चली कि आपको अपनी बीवियों की इसलाह की इतनी फिक्र थी कि आप उनको कहा करते थे कि उठो और तहज्जुद पढ़ो। रह गया ये आखिरी जुमला, फरुब्बा का आसियत इन फिर दुनिया आरियत आखिरा, आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि इस वक्त इस जुमले की क्या जरूरत है, कि क्यामत के दिन बहुत सारी कपड़े पहनने वाली औरतें बरना होंगी। अमूमन आपने ये हदीस लोगों को पर्दे के बाप में सुनाते हुए सुनते देखी होगी कि बहुत सारी औरतें जो कपड़े भी ऐसे पहनती हैं कि जिससे जिस्म झलकता है, क्यामत के दिन वो बेलिबास उठाई जाएंगी। लेकिन यहाँ इसका ये सिनेरियो नहीं है, यहां मुराद है कि आज शौहर की बीवियां हो, नबी सल्लम क्या है, शौहर थे, आज मेरे इस शौहर होने पे मान ना करना کہ ہم نبی کی بیوی ہیں، آج اللہ نے تمہیں امہات المومنین میں شامل کر دیا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ قیامت کے دن تم جنت میں میری بیویاں بنو اگر تم اپنی ذاتی عبادات اور اپنے فرائض پہ توجہ نہیں دو گے. قرآن پاک میں عورت کو مرد کا لباس کا ہے نا، آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے، تو اس کی دلیل وہی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ اگر ہمارے شوہر نیک ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں نیک شوہر دے دیے، تو مت اس پہ مان کیجئے کہ اب ہم بھی ضروری جنت میں چلے جائیں گے، اور اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے عمل کام آئے گا. روایت میں آتا ہے کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اس کو آگے نہیں کرے گا. بعض دفعہ ہم کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا کے کہتے ہیں بس سارے خاندان کا اب یہی ایک قسم کا کفیل ہو گیا، اور مجھے بھولنا نہیں، میری سفارش کرنا، پھوپھیاں بھی کہیں گی، خالائیں بھی کہیں گی، آپ کو کیا پتا کہ وہ بیچارہ خود بھی جا سکے گا کہ نہیں. تو کسی کے بھروسے پہ تو آپ کام نہیں کر سکتے، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے یہ کام کرنے ہیں. پھر اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ رات کے وقت فتنے بھی اترتے ہیں اور رات کے وقت میں خزانے بھی اترتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ احادیث سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ جو اول رات ہوتی ہے نا، مغرب اور عشاء کے قریب کا جو وقت ہے، یعنی ابتدائی رات، اس وقت فتنے اترتے ہیں، جنات گھروں کو جاتے ہیں. اسی طرح سے چھوٹے بچوں کو کھلی جگہوں پہ لے جانے کا حکم نہیں ہے، اور اس وقت جب کوئی چیز باہر ایکسپوز کی جاتی ہے نا، تو خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کے اوپر چمٹ جائیں گے، جس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں نا جن چمٹ جائیں گے، چیزیں اس کے اوپر اثر کر دیتی ہیں، چڑیلیں، وٹ ایور جو بھی ہے. اور رات کا جو یہ تیسرا پہر ہے نا، اس میں آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، خزانے ہیں. سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اتر کے آ کے کہتے ہیں کہ میں ساتویں سے پہلے آسمان، یہ جو آسمان ہے دنیا، اس پہ اللہ تعالیٰ آ کے کہتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں. حل میں مستغفر ہے کوئی جو گناہوں سے بخشش مانگے، ہے کوئی رزق مانگنے والا، بیماریوں سے صحت مانگنے والا، تو اللہ دینے والا ہے. جو جاگ رہے ہوں گے وہی لیں گے نا. اچھا اب آپ ہمارا اپنا ذاتی عمل دیکھیے، آپ اپنے اوپر لیں کہ میں بیمار رہتی ہوں، کیوں رہتی ہوں، کیا وجہ، اس کا سورس کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عموماً، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی، لیکن عموماً ہمارا سج سمر کے پارٹیوں دعوتوں میں جانا مغرب عشاء کے قریب ہی ہوتا ہے. اس وقت خوشبوؤں میں بسے ہوئے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، جس طرح انسان ہم پہ عاشق ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جن بھی عاشق ہو جائے، ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے اوپر کسی چیز کا حملہ ہو جائے. یہ جو ہماری طبیعت میں کسل مندی رہتی ہے نا، وہ تھکے تھکے، بیمار بیمار، دل کی خوشی نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یقین کریں ان میں سے کوئی سبب ہے. خوشبو لگاتے ہیں، اب آئے میں اتنی خوشبو ہے کہ دور سے چمک رہے، آپ کو کسی کو ملنے سے پہلے اس کی خوشبو آئے. دو ہی ایکسٹریم ہے نا، یا تو بدبو آئے یا خوشبو آئے. ایکسپوجر اتنا کیا ہوا ہے کہ باہر چیزیں دکھتی ہیں. چھوٹے بچوں کو ہم سجا سنوار کے لے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ساری رات روتا رہا، پھر کہیں گے نظر لگ گئی، کبھی اپنی طرف خیال نہیں جاتا. اور جب رات کو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہم کپڑے لپیٹ کے سو رہے ہوتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے برکت اترنی تھی ہم اس وقت سو جاتے ہیں، اس لیے ہم بیمار رہتے ہیں، اس لیے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے. ہمیں کیا نہیں دیا اللہ نے، لیکن کیا ہم اس طرح گھوڑے کی طرح دوڑ دوڑ کے کام کرتے ہیں؟ آپ آزما کے دیکھیں، جو لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں نا، ان کا سٹائل آف سلیپنگ اینڈ ایٹنگ اور ایوری تھنگ سنت کے مطابق ہوتا ہے. جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی نا، یقین کریں آج کی سائنس ہی بتاتی ہے. اگر رات کی ابتدائی حصے میں آپ سو جائیں تو بڑی اچھی نیند آئے گی، اور نیند اچاٹ ہو گئی، بیٹھے ہیں شادی حال میں کھانے کے انتظار میں، جمائیوں پہ جمائیاں لے رہے ہیں، اور جب وہاں سے 12-1 بجے پلٹیں گے نیند ہی اٹھ چکی ہوگی، پھر کہتے ساری رات نیند نہیں آئی. اور یہ چیز آج سائنس نے پروف کی ہے کہ مغرب عشاء کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت ہوا چلتی ہے ایک جو بھاری ہوتی ہے، وہ اعصاب پہ بوجھ ڈالتی ہے تو نیند آتی ہے. جو اس وقت سو جائیں تھوڑی سی بھی نیند ان کو کفایت کرے گی، اور جو اس وقت نہیں سوتے تو اس کے بعد ہلکی ہوا ہوتی ہے جس میں نیند نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزوں کا کوئی ریلیشن ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس کی باتیں پڑھ پڑھ کر کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پہ عمل کی کوشش کریں، خود بہت برکت آئے گی، صحت بھی ملے گی، خیر بھی ملے گی. پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب السمر فی العلم، रात को इल्म की बातें करना, यानी रात को जागना तो पसंदीदा नहीं है, तो सवाल आता है क्या रात को फिर इल्म की महफिल सज सकती है? तो बिल्कुल सज सकती है, उसकी दलील है। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा काल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, सल्ल बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इशा फी आखिरी हयातिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में हमें नमाज इशा पढ़ाई, यानी आपकी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे, इशा की नमाज आपने हमें जमात से पढ़ाई। फलम्मा सल्लमा, फिर जब आपने सलाम फेरा, कामा तो खड़े हो गए, फ़काला तो फरमाया, ये अब हदीस के अल्फाज हैं, अरअईतकुम लैलतकुम हाज़िही, क्या तुमने इस रात की अहमियत को जाना है, यानी क्या गौर किया है तुमने अपनी इस रात में? फ़इन नरा समियति सनतिन मिन्हा ला यबका मिम्मन हुआ अला ज़हरिल अर्दी अहदुन। अल्लाहु अकबर। फरमाया ला यबकी, कोई नहीं बचेगा, मिम्मन उसमें से हुआ जो अला ऊपर ज़हरिल अर्दी ज़मीन की पुश्त पर है, अहदुन कोई एक, यानी आज जो इस ज़मीन पर है 100 साल बाद इसमें से कोई भी मौजूद नहीं होगा। बात वाजे, यानी अमूमन 100 साल का ही लाइफ स्पैम होता है, और जो उस वक्त जिंदा थे वो कितने साल तो पहले ही गुजार चुके थे। इसी वजह से फिर इस हदीस से हदसीन ने वो बात ली है कि हज़रत हिजर, जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि वो अभी तक जिंदा है, वो कहते हैं वो जिंदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा ना कि ला यबका, कोई बाकी ही नहीं रहेगा, मैं मन हुआ अला ज़हरिल अर्दी, के जो कि मौजूद हैं। तो ये यहाँ बात क्या समझ आई कि नमाज से इशा के फौरन बाद आपने एक छोटा सा वाज दिया। आप देख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज कितना लंबा है, 1-1.5 जुमले का। मुझे तो ऐसे लगता है अल्लाह के नबी का स्टाइल आज की बात का था, एक बात की स्टॉप ख़त्म, चलो घर जाओ, गौर करो, अमल करो। और साहबा भी अल्लाह के बंदे तो उसे एक बात पर अमल कराते थे, सारी रात उसको सोचते रहते थे। आज हम टनो मनो सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अपने अमल पे कहते हैं अब सुन तो मैं रही हूँ, अमल कोई और कर ले, सारे काम मैं नहीं करने। तो इससे क्या पता चलता है कि कलाम कौन सा है, कि मा कल्ला व दल्ला, छोटा हो और दलील वाला हो। बात ऐसी होनी चाहिए जो अगले के दिल में उतरे और उसको सोच में डाल दे। अगली रिवायत भी कुछ इसी किस्म की है, अनिब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा काल, बित्तु फी बैति खालती मैमूनत बिन्ती अल-हारिसी, कहते हैं कि मैंने रात बसर की अपनी खाला मैमूना बिनते हारिस के यहाँ। कौन कह रहे हैं? इब्ने अब्बास। आप समझ गए इब्ने अब्बास अपनी खाला के घर कैसे आ गए? नबी सल्लम के क्या थे ये? चचा साथ भाई थे। नबी सल्लम की बीवी का नाम था मैमूना, मैमूना कौन थी? इनकी खाला थी, यानी शादीशुदा खाला के घर में उसका भांजा आया ना। तो इससे भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी कैसे मेहमान नवाज थे, और घर भी छोटे ही होते थे, अभी आपको अंदाजा होगा। कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी के घर में बसर किया, याद रखिए कि ये छोटे लड़के थे, यानी लड़कपन था उस वक्त इनका। मैमूना कौन सी? ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा फी लैलतिहा, और थे नबी सल्लम उनके हाँ उस रात, यानी अल्लाह के नबी की मुख्तलिफ बीवियाँ थी, तो उस रात कहते हैं कि आप भी उसी घर में थे। अब इनको मौका मिल गया अल्लाह के नबी को देखने का, ये रात को क्या करते हैं, तो देखा फसल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इशा, तो आपने देखा कि आपने इशा की नमाज पढ़ी मस्जिद में, सुम्म जा इला मंजिली ही, फिर अपने घर में यानी अपनी मंजिल पर आ गए, फसल्ला अरबा रकातिन, फिर आपने 4 रकत पढ़ी, ये क्या थी? सुन्नतें। यहाँ से पता चल रहा है ना कि सुन्नतें रात को पढ़नी चाहिए, तन्हाई में पढ़नी चाहिए, दूसरों के साथ उसी वक्त 17 रकत ज़रूरी नहीं है। फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़े आपने, फिर घर आए, फिर 4 रकतें पढ़ी, सुम्मा नामा, फिर सो गए, सुम्मा गामा, फिर खड़े हो गए कुछ रात के हिस्से में, यानी रात को सुन्नतें पढ़ी, फिर उसके बाद सो गए, फिर उसके बाद जब उठे, सुम्मा काला, फिर कहा नामल गुलैमो, क्या बच्चा सो गया? नामा, मैंने सो गया, गुलैम गुलाम से, और गुलाम अरब लोग लड़के को कहते थे, टीनेजर आप कह सकते हैं, बच्चा, अपनी बीवी से पूछते हैं कि क्या बच्चा सो गया, او کلمتو تشبیہا، یا کچھ اسی قسم کی بات آپ نے کی، یعنی آپ نے پوچھا سو گیا، یا کچھ اس سے ملتی ہوئی بات کی. ظاہر انہوں نے غور سے نہیں سنی نا، سو رہے تھے نا حضرت ابن عباس، تو کہہ رہے ہیں میں نے ایسے ہی سنا کہ اللہ کے نبی نے یا تو یہ کہا ہے کہ کیا بچہ سو گیا، یا پھر کچھ ایسا ہی کلمہ کا. ثم قام، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. فقمت، پھر میں بھی کھڑا ہو گیا، یعنی کہتا ہے کہ میں بھی اٹھا. ان یساری ہی، اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. فجعلنی ان یمینی ہی، تو آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا. کیسے کیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تہجد پڑھ رہے تھے نا، تو یہ بچے تھے تو یہ اللہ کے نبی کے سائڈ پہ آ گئے. آپ کو یہ مسئلہ پتا ہوگا کہ جب کہیں دو مرد ہوں تو جماعت کرانے والا اور دوسرا شخص اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا، تو یہ بچے تھے، ان کو سمجھ نہیں، یہ لیفٹ سائڈ پہ آ گئے. تو اللہ کے نبی نے ان کو کیسے کیا، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیا. اور اس صورت میں کرنا کیا ہوتا ہے، یہ امام ہے نا، تو جو شخص ہے وہ امام کے پیچھے سے آئے گا، آگے سے نہیں آئے گا، نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے پکڑ کر ان کو اپنے دائیں طرف کر دیا. فصلی خمس رکعات، پھر آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی. پانچ کون سی؟ چار پہلے پڑھ چکے تھے نا رات کو، چار اب آٹھ رکعت ہو گئی تہجد، اور ایک وتر پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی تہجد ہو گئی. ثم صلی رکعتین، پھر دو رکعتیں وتروں کے بعد پڑھی، ٹھیک ہے. ثم ناما، پھر سو گئے. حتی یہاں تک کہ سمیتو، میں نے سنا، غتیتہو او خطیتتہو، آپ کے خراٹے بھرنے کی آواز سنی. یعنی آپ اتنی گہری نیند سو گئے کہ آپ خراٹے لے رہے تھے. پھر ثم خرج الی الصلاۃ، پھر اس کے بعد نکلے اور فجر کی نماز ادا کی. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں پڑے سوئے نہیں رہتے تھے. ہم اپنی رات دیکھیں، اول تو ہم سوتے ہی 12 بجے کے بعد ہیں، پھر بھی جو مرضی ہو جائے. اور اکثر لوگوں کے میں میسیجز دیکھتی ہوں، اور میسیج پہ ٹائم آ جاتا ہے نا، رات 12, 1, 1.5, 2 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کیسے اگلے دن فریش ہوں گے. اللہ کے نبی جاگتے تھے سوتے تھے، جاگتے تھے سوتے تھے، ٹھیک ہے. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ سو گئے، خراٹے بھی بھرے، پھر فجر کے لیے ایسے ہی اٹھ کے چلے گئے، اس میں وضو کا ذکر نہیں ہے. تو سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو آن الباری ایک یعنی کتاب ہے، اس کا پیج نمبر بھی لکھا ہوا ہے 267، یہ شرح ہے بیسیکلی بخاری کی. تو وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، یہ صرف آپ کے لیے خاص بات تھی، کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، غفلت نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال یہ مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے، اگر ہم سو جائیں گے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. اگلا ٹاپک اس میں انشاءاللہ وضو اور اس کے بعد نماز، بڑا طویل ٹاپک چلے گا، انشاءاللہ اسی کے دوران ہماری سب کی نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں گی اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے. اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، حفظ العلم، علم کو یاد رکھنا. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں بیان کی، یعنی ہر وقت پڑھتا پڑھاتا ہے یا ہر وقت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ میرا حال کیا. ولولا آیتان فی کتاب اللہ، اگر نہ ہوتی دو آیتیں اللہ کی کتاب میں، ما حدثت حدیثا، نہ بیان کرتا میں کوئی حدیث. یعنی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اس کو بہت حدیثیں بیان کرنے کا شوق ہے، حالانکہ میں اتنا ڈرتا ہوں حدیث بیان کرتے ہوئے کہ اگر قرآن میں دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی حدیث بیان نہ کرتا. اور وہ آیتیں کون سی ہیں؟ کون سی؟ ثم یتلو، پھر وہ پڑھتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى الی قولہ الرحیم، یعنی قرآن کی آیت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی، آیت کے آخر یعنی لفظ رحیم تک، تو میں اس کو نہ کرتا. ان اخواننا من المہاجرین، بے شک ہمارے بھائی جو مہاجر ہیں، کانا تھے، یشغلکم الصفق بالاسواق، مصروف ہو جاتے تھے خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں. یعنی کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ حدیث اللہ کے نبی سے کیوں لی، کہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح ہر وقت بازاروں میں جا کے بھوتاؤ نہیں کرتا تھا. اور آپ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ مسجد نبوی میں ہی رہے، شادی نہیں کی، کاروبار نہیں کیا، کہ کہیں میں آپ کی علم سے محروم نہ رہ جاؤں. ठीक है। और जो दूसरे अंसारी थे उनका क्या हाल था, वैन्ना इख्वान ना मिनल अंसारी, और बेशक हमारे भाई जो अंसार से थे, काना यश गलुहुमुल अमलु फी अमवालिहिम, वो मसरूफ रहते थे अपने माल में, अमवाल में, यानी ज़रात पेशा थे, ज़मीनों में लगे रहते थे। जबकि अबू हुरैरा को इतना इल्म कहाँ से मिला, वैन्ना अबा हुरैरा तकाना यल्ज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और था अबू हुरैरा तो चिपका रहता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हत्ता के लियश पेट भरने के लिए, यानी मैं क्यों ज़्यादा ले गया कि मैं तो अपना पेट भरने के लिए अल्लाह के नबी के पास मौजूद रहता था। वह यखज़ुरू माला यखज़ुरून, मैं तो उस वक़्त भी हाजिर होता था जब दूसरे हाजिर नहीं होते थे। वह यखफ़ु माला यखफ़ुन, और वो बातें याद कर लेता था, हिफ्ज़ कर लेता था जो दूसरे लोग याद नहीं कर पाते थे। क्या समझ आया? इल्म के लिए फुल डेडिकेशन, फुली टोटल, इतना ज़्यादा आप इसके अंदर डूब जाएं कि आपको दूसरी चीज़ों की परवाह ना रहे। और मैं देखती हूँ कुछ लोग बहुत बाद में इल्म के सफ़र में शरीक होते हैं लेकिन बहुत आगे चले जाते हैं, डेडिकेशन। और अगर अब इस वक्त भी अभी हमारे अंदर डेडिकेशन ना आई तो शायद फिर कभी भी नहीं आएगी, यकीन करें। तो इल्म को अपना ओढ़ना बिछोना बनाने वालों को अल्लाह फिर इज्जत देता है ना। एक कॉल कहीं पड़ा था बड़ा अच्छा, कि इल्म तुम्हें अपना कुछ भी नहीं देता जब तक तुम अपना सब कुछ उसको नहीं दे देते। सब कुछ देना पड़ेगा, दिल, दिमाग, सोच, वक्त, जज्बे, इमोशन, कितना कुछ तुम्हारे साथ चिपका हुआ है। ऐसे लगता है जो इल्म की क्लास है 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, हफ्ते में 1 दिन 4 दिन, सारे मसले ही उसी वक्त में आते हैं। और जब भी कभी हमें नामुमकिन लगे आना, उस वक्त इस बात को याद कर लें कि अबू हुरैरा चिपके ही रहते थे। यलजिमु इल्ज़ाम, लजीमा मल लजीमा इस्तिग़फ़ार, ये लफ्ज़ बहुत जगह आता है, यानी मैं अल्लाह के नबी का साथ छोड़ता ही नहीं था, कहीं भी जाते थे। और ये जो बात कहना कि अपना पेट भरता था उनके साथ, क्या मतलब है इसका? इल्म की प्यास बुझाता था। और हकीकत है कि ये सिर्फ इल्म की प्यास नहीं, इनको इतनी भूख लग जाती थी, आप लोगों ने तफसीर की क्लास में सुना होगा, कि इनको बेहोशी के दौरे पड़ जाते थे। कहते हैं कि लोग मेरे पास खड़े बातें कर रहे होते थे कि अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा पड़ा है, लेकिन मैं इतनी बात कहने की हिम्मत नहीं रखता था कि ये कह दूं कि लोगों मुझे मिर्गी नहीं है, मैं भूखा हूँ। भूख लगी होती थी। और फिर इनको कभी कोई अंसारी खजूरें ले आता, वो खा लेते। मारूबा क्या एक दफ़ा ये भूखे थे और बाहर निकले, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उधर से आए, उससे पहले हज़रत उमर थे। कहते मेरा दिल था कि मैं इस सोच से बाहर आया हूँ कि शायद कोई सहाबी मुझे अपने साथ ले जाए, खाने पर ले जाए। देखा तो हज़रत उमर आ रहे थे उधर से, तो मैंने ऐसे ही बात करने के लिए उनसे कहा, हज़रत उमर एक आयत का मतलब तो समझा दें। कहा कौन सी? तो सूरह दहर की वो आयत है कि जिसमें आता है कि वो लोगों को अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। मैंने कहा ज़रा इस आयत का मतलब तो समझा दें। कहते हैं हज़रत उमर मेरा इशारा नहीं समझे, बल्कि मुझे उस हदीस की वो बातें समझाने लग गए जो मुझे पहले ही पता थी। मेरा ख्याल था ये बात करूँगा तो शायद उनको ख्याल आ जाए कि मैं भूखा हूँ तो मुझे कहें कि आओ खाना खा लो। लेकिन फिर अल्लाह के नबी आए और उन्होंने पहचान लिया कि अबू हुरैरा भूखे हैं, घर ले गए। और वहाँ गए तो अल्लाह के नबी को किसी ने दूध का एक प्याला दिया, भेजा तोहफे में। ये हालात थे उनके, घर में कुछ भी नहीं होता था, ये नहीं कि अपनी पसंद का नहीं होता था, कभी किधर से आता था तो खा लेते थे। और अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफा को बुला के लाओ। आप तो और भी दिल पर चोट पड़ी होगी ना कि शायद मुझे ही दे देते। आप सोचें ना हमारे अंदर कितना टॉलरेंस है, हम बहुत अच्छे हैं, बात बहुत मानते हैं। कब? जब बात हमारी मर्जी से चल रही हो, रेजिस्ट करना पड़े, अगेंस्ट होना पड़े, तो हम बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं ना। तो वो कहते हैं कि जरूरत नहीं थी कि कह सकूं कि अल्लाह के नबी आप और मैं ही आधा आधा पी लें। सबको बुला लिया, और जब वो सब आगे 60-70 लोग होंगे, उससे भी ज़्यादा होते थे, तो काबू हुरैरा दाई तरफ से पिलाना शुरू करो, और इम्तिहान। लेकिन देखिए इम्तिहान देने वाले और उसमें पूरे उतरने वालों को फिर दर्जा क्या मिलता है। सब ने दूध पी लिया और कहते हैं उस प्याले में इतना भी कम नहीं हुआ कि दूध थोड़ा सा कम हुआ, हत्ता कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे प्यासे रह गए। फिर कहा कि अबू हुरैरा अब तू पी। मैंने कहा नहीं अल्लाह के नबी आप पी हैं। कहा नहीं तुम पियो। फिर पिया। कहा और पी। फिर पिया। फिर पी। कहा अल्लाह के नबी अब तो नाखनों से भी दूध न छुड़ेगा, इतना दूध आ गया अंदर। कहा फिर उसके बाद हम सब का बचा हुआ दूध नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। ये अबू हुरैरा, इनकी बात करें और ये वाक्या ना बयान करें तसल्ली नहीं होती। ये इल्म की खिदमत करने वाले अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, सबसे ज्यादा हदीस है जिस सहाबी से रावी ये रिवायत है वो अबू हुरैरा है। लेकिन इन्होंने इल्म को कुछ दिया था तो मिला। अल्लाह हमें भी इनकी डेडिकेशन दे दे। इन्हीं से एक और रिवायत है, वन हु रदियल्लाहु अन्हु काला कुल्तु या रसूलुल्लाह। अबू हुरैरा से रिवायत है कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, इन्नी अस्मा मिन का हदीसन कसीरन अनसाहू। अल्लाह के नबी, बेशक मैं सुनता हूँ आपसे बहुत सी हदीसें लेकिन फिर उसको भूल जाता हूँ। अनसाहू, नसियान से निसियान, भूल जाता हूँ। काला, तो आपने फरमाया, ओ बसुत रिदा अका, फैलाओ अपनी चादर को, चादर फैलाओ। फिर कहते हैं, फा बसत तू हूँ, फिर मैंने अपनी चादर फैलाई। काला, तो आपने फरमाया, फ़रफ़ बियदी ही, हाथों से चुल्लू की तरह पकड़ लो, यानी उसमें एक जैसे ऐसे लूप सा बना लो। सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया, जुम्मा हो, ओढ़ लो इसको या लपेट लो इसको। फिर फदममतु हो, फिर मैंने उसको लपेट लिया। फमा नसी तुशन बादहु, फिर मैं इसके बाद कोई चीज ना भूला। अब ये क्या था? ये मोजज़ा था अल्लाह के नबी का कि हज़रत अबू हुरैरा ने वो चादर अल्लाह के नबी के कहने पर इस तरह ओढ़ी तो उसके बाद उनके अंदर से भूल चली गई, जो हर इंसान को होती है। अब ये देखिए कि इस तरह के जब मोजज़ात हम पढ़ते हैं, क्या किसी इंसान की जुबान से हम इसको सुने कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मान सकते हैं? ये दोनों वाक़ अजीब बात है कि साथ ही आगे मुझे किसी ने इस ट्रिप में बताया, नाम मैं नहीं लूँगी, बहुत मारूफ शख्सियत है, बहुत सारे लोगों का दिल टूटता है जब नाम लिए जाए और हमारी आदत नहीं ना ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने बताया कि एक जिनको बहुत सारे लोग अंधाधुंध बिलीव भी करते हैं, तो वो नॉर्वे आए थे और उनको एंड ऑफ वर्ल्ड है वहाँ लेकर गए, जाते हैं लोग वहाँ, तो वो कहते हैं कि मुझे वहाँ की मछलियों ने, सारियों ने आकर सलाम किया है किनारों पर। और उन्होंने एक जगह दावा किया है, कितने साल पिछले मुझे सही याद नहीं, 40-50-60 साल से आज तक मगरिब के वजू से मैंने फजर पढ़ी है। तो वो मुझसे सवाल लोग पूछ रहे थे कि हो सकता है ऐसा कि एक बंदा मगरिब से लेके फजर तक बेवजूही ना हुआ हो इतनी जिंदगी में? आप देखिए ये बातें सुना, अब मैं जो आपको ये बातें सुनाऊं तो आप तो मेरे पाँव भी दबाएंगे, मेरे कंधे भी दबाएंगे, मुझे पीर बना लेंगे, फिर आपको मेरी ये बातें तो सुनने की ज़रूरत ही नहीं। आप कहेंगे कि बस वो गलत जुमले बोलते हैं लोग कि देख लिया हमने पीर साहब को तो हमने गोया कि जन्नत को देख लिया। यहाँ से शख्सियत परस्ती आती है। ये अल्लाह के नबी की बातें हैं कि वो सो के भी उठ जाएं, और इसी तरह की हदीसों को लोगों ने फिर अपने ऊपर उलमा ने और बुजुर्गों ने बना के लिया होता है। हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन आप आंखें खोल के रखें, जिस बंदे की बात से फ़ायदा हो ना उसके लिए दुआ करें, ना कि उसकी दुआएं लेनी शुरू हो जाएं और कहें कि बस ये हमारे सर पे हाथ फेर दें तो हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। यहां से फिर इंसानों के अंदर ये चीजें आने लगती हैं। फिर इसी तरह अगली हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही है, कहते हैं, हफिज तो मिन रसूलिल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिफ्ज कर लिए क्या, विया आइन, दो बर्तन, जर्फ लिखा हुआ इधर, जर्फ बर्तन को कहते हैं अरबी में। फअम्मा अहदुहुमा, बस उनमें से एक तो वो है, फवसस्तु हु, जिसको जाहिर कर दिया गया, वअम्मल आखरु, और दूसरा वो है, फलउ, बस अगर, बसस्तु हु, मैं इसको जाहिर कर दूं, कुतिया हाजल बुलूम, तो काट दिया जाए इससे मेरा गला। अब ये क्या बात है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। हज़रत अबू हुरैरा चूँकि हर वक्त अल्लाह के नबी के साथ रहते थे ना, तो आपको हर तरह का इल्म अल्लाह के नबी से मिला। एक इल्म जो जाहिर कर दिया वो शरीयत का इल्म था जो भी है। अब कौन सा दूसरा इल्म है कि गला काट दिया जाए, तो इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात से पता चलता है कि ये गलत हुक्मरानों के बारे में बातें थी, यानी वो हुक्मरान जो कि अपने इस मनसब का गलत फ़ायदा उठाएंगे, उनके साथ जो कुछ किया जाएगा या होगा उसकी तरफ इशारा है। या फिर अल्लाह आलम कोई और भी इलूम इनको दिए जाएंगे। एक इनका और भी इल्म आता है कि एक मौके पे नबी सल्लम कहीं गए, ये भी उनको ढूंढते हुए चले गए, फिर एक सुरंग से गुजरे वहाँ गए, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या हुआ। कहा अल्लाह के नबी हम घबरा गए थे, आप किधर हैं, आप हमें मिल नहीं रहे। तो आपने कहा अबू हुरैरा मैं तुम्हें बताऊं कि मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा। कहा अल्लाह के नबी ये बात दूसरों को मत बताएं, लोग तो इसी पे कियास करने लग जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं किसी को बताऊं, आपने कहा बताओ। कहा अच्छा कोई निशानी दें कि लोग आपसे मैं मिल के आया हूँ। कहा मेरी जूतियाँ ले जाओ, और जूती लेकर गए। और कहते हैं कि मुझे डर ना हो इस बात का कि अबू हुरैरा ने अल्लाह का दीन छुपाया, तो मैं ये बात कभी किसी को ना बताता, क्योंकि लोग फिर ऐसी बातों पे तकिया कर लेते हैं कि अच्छा ला इलाहा तो हम कहते हैं तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर जन्नत में जाना और बीच में जहन्नम की सजाओं को भुगतना ये भी होगा। आखिर में जन्नत में चले गए, ये कौन सी बड़ी बात है। असल तो ये है कि इंसान कलमा पढ़ने के बाद बगैर जहन्नुम में गए जन्नत में जा सके। तो लिहाजा ये बात इसलिए आपको बताई कि जो इल्म की गहराई में जाते हैं ना, उनको और बहुत ऐसी बातें भी पता चल जाती हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता होती। तो इन सारी चीज़ों पर ख्वाहिश रखनी चाहिए कि कोशिश करें कि अपने आप को बांधें। कोई सवाल आपके जहनों में ना हदीस को सुनते हुए आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी इनका सवाल है कि भूल जाता है तो उसका बेहतरीन तरीका है कि दुआएं पढ़ें जो अल्लाह के नबी ने हाफ़से को तेज़ करने की बातें बताई हैं, जैसे रब्बिश्राहली सदरी है, फिर इसी तरह रिस्क हलाल का अहतमाम, दिल दिमाग को गलत फिक्रों से निकाल दें, अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करें। आप इसको यूँ सोचें, मैं आपको फील कराती हूँ, आपका ब्रेन क्या है, आपका क्लोजेट। अगर आपके क्लोजेट में हर चीज़ अलमारियों में सामने टैग लगी हुई लगी है, कभी भी ढूंढ लेंगे, कोई नई चीज़ रखेंगे जाके फौरन रखेंगे, जगह बन जाएगी ना। अब इसका ऑपोजिट है, एक धक्का चौकड़ी पड़ी हुई है और खोलो दरवाज़ा और चीज़ फेंक दो, बहुत सारे लोगों की क्लोजेट्स ऐसी होती हैं। अब उसमें कोई नई चीज़ रखेंगे तो भी जगह नहीं है, पहली जो वो मिलेंगी नहीं। अब क्या करें, पहले सारी चीज़ें बाहर निकालें, तय करें, रैप अप करें, उनको क्लासीफाई करें, ये वो कर करा दें, उसके बाद आप नई चीज़ें भी रखने की जगह बना लेंगे, पहली भी मिलेंगी। हमने अपने दिमाग को रंग बिरंगी इंफॉर्मेशन मालूमात खबरें, उधर क्या हो रहा है, पहले तो हम दुनियावी सतह की खबरें दिमाग में डालते हैं, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हम पाकिस्तान की खबरें सुनते हैं, फिर तीसरे दर्जे पे हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की खबरें सुनते हैं, फिर उसके बाद हम खानदान की खबरें सुनते हैं, किसकी बेटी किधर, किसका रिश्ता हुआ, किसका टूटा, फिर मियाँ साहब की शामित आ जाती है, मियाँ साहब किधर जाते हैं, क्या करते हैं, पैसे किसको भेजते हैं, तनख्वाह किधर है, माँ को क्या भेजते हैं। जब आपके दिमाग में इतनी चीज़ें हैं तो कुरान की आयत तो घुसेगी नहीं। हर चीज़ को उसकी अहमियत के मुताबिक सॉर्ट आउट करें और फालतू चीज़ें डिस्कार्ड करें, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं जाने दो, ये मुझे कुछ नहीं जान दो। अपने दिमाग को हल्का फुल्का खाली रखें, एक दफ़ा भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, चलिए फिर यहाँ रुकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस इल्म पे अमल की तौफीक दे और बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें हमारे अंदर ऐसे रच बस जाएं कि हम इसको लें। और ये जो मैंने आखिरी बात की है ना छांटी की, यकीन करें कि इस छांटी से आपको याद हिफ्स जो हो वो तो हो सो हो, आप खुश बहुत रहेंगे। जब आपका घर साफ होता है तो आप खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं ना। तो सबके फिक्र लगाने से बात नहीं बनेगी, अपने काम का काम करें और ज़िंदगी में जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उसको रख लें, यकीन करें। मैंने देखा है कि वाकई जो अपने कंधे पे बैग डाल के जब चाहें उठ के चल पड़े वही खुश है, रखना समेटना संभाल, और वो चीज़ें संभाली होती जिसकी ज़रूरत नहीं। बस आप देखिए आजकल सर्दी है ना, आप देखें आपके पास कितने पेयर्स हैं सॉक्स के। मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रोज़ चेंज करते हैं और हफ्ते में एक दफ़ा लॉन्ड्री करते हैं तो आपके पास 7 जोड़े होने चाहिए मैक्सिमम, इतने हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अगर एक धो ले एक बरत ले 3 भी हो तो बहुत अच्छा आपका गुजारा होता है। सफ़र में मैं इस चीज़ को बहुत आजमाती हूँ कि जब सफ़र में ऐसे चल सकता है तो घर में क्यों नहीं चल सकता, लेकिन घर में हम पाँव पसार लेते हैं। इसी तरह बर्तन देखे, कौन से बर्तन हैं जो रोज़ इस्तेमाल करती हूँ, बाकी नहीं ज़रूरत किसी और को दे दें फिर और ले लीजिएगा। तो हम अक्सर फालतू चीज़ें संभालते रहते हैं, इसी तरह हम अपने जहनों में भी फालतू बातों को रखते हैं। ठीक है, तो करेंगे थोड़ी सी सफाइयाँ इंशाल्लाह। چلیے جزاک اللہ خیر واسن جزا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.